ओम शांति। बिंदु, बिंदु क्या? जस्ट फोकस्ड, कंसंट्रेटेड थिंग इज बिंदु। वी आर डिस्कसिंग कंसंट्रेशन। तो जैसे आपने पूरी क्लास अभी अरविंद भाई ने कराई दी, बिंदु, बिंदु इज नथिंग बट कंसंट्रेशन। व्हाट दे से इज कंसंट्रेशन इज एसेंस ऑफ ऑल नॉलेज। जितना भी ज्ञान है उसका अल्टीमेटली जब एसेंस निकालेंगे तो वो सिर्फ एक बिंदु, एंड दैट इज कंसंट्रेशन। कहते हैं कि दुनिया में नथिंग कैन बी डन विदाउट कंसंट्रेशन। और ह्यूमन बींग का जो 90% थॉट प्रोसेस है, थॉट पावर है, वो वेस्ट होता है, बिकॉज इट इज नॉट कंसंट्रेटेड, इट इज नॉट फोकस्ड। इवन ब्राह्मण जीवन में भी हम देखें तो बाबा ने कहा अभी सबसे बड़ी अपवित्रता क्या है, हमने सारे बड़े बड़े विकारों पर तो आराम से विजय पा ली, लेकिन अभी जो सबसे बड़ी अपवित्रता ब्राह्मण जीवन में है वो है वेस्ट थॉट्स। वेस्ट थॉट मीन्स अनरेगुलेटेड, अननेसेसरी, विदाउट एनी पर्पस, वॉट एवर वी आर थिंकिंग इट्स। सो वी नीड टू कंसंट्रेट। लौकिक लाइफ में भी देखते हैं अगर हम कंसंट्रेशन नहीं करेंगे तो लाइफ में सक्सेस होना बहुत मुश्किल है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में आप जाओ, पढ़ाई में, बिजनेस में, इवन पर्सनल लाइफ में, हर जगह कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है। अगर कंसंट्रेशन नहीं है तो सक्सेस नहीं हो सकते। कभी कभी हम बोल देते हैं किसी, जब दो लोगों को कंपेयर करते हैं कि दोनों को एक से सर्कमस्टांसेस मिले, दोनों एक ही माहौल में पले बड़े, सब कुछ उनके लिए सेम था, ऑल रिसोर्सेज वर सेम, बट उनमें से कोई एक आगे निकल गया, एक पीछे रह गया, तो हम लोग क्या बोल देते हैं कि लक, उसका लक काम करता है। इट्स नॉट द फैक्ट। एक्चुअली जो सक्सेसफुल हुआ या जो आगे निकला उसका कंसंट्रेशन बहुत अलग था, उसने किसी चीज पर, पर्टिकुलर चीज पर फोकस किया। वैसे भी फैमिलीज में देखा होगा ना, कभी कभी कोई बच्चे होते हैं उनको बचपन में बड़ी मार पड़ती है, पढ़ता नहीं है, बहुत दुत्कार मिलता है, ये तो किसी काम का नहीं है। हर जो भी कोई होता है फैमिली में बोलता है इसका कंसंट्रेशन ही नहीं है, इसका अटेंशन ही नहीं है किसी भी चीज पे, और बाद में वो मिनिस्टर बन जाता है या कुछ और ऐसा खास बन जाता है, क्योंकि एक्चुअली हम उसको उस चीज के लिए फोर्स कर रहे थे जिस पर उसका अटेंशन नहीं था, जिस पर उसका कंसंट्रेशन नहीं था। बाद में उसको जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिलती है वो जाकर के एकदम एक्सेलेंट बन जाता है। तो कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है। कंसंट्रेशन नहीं होगी तो क्या होगा? इफ यू डोंट कंसंट्रेट व्हाट विल हैपन? परफेक्शन नहीं आएगी। और हाँ, हमने देखा ना, हम कोई कार्य जैसे कर रहे हैं, यहां भी जैसे अपने अलौकिक जीवन की बात करें तो वी ऑफन डू सिली मिस्टेक्स। अगर हम अटेंशन से काम नहीं कर रहे हैं, लाइक अभी हम कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, अगर हम अभी इसमें अटेंशन नहीं दें तो कौन डेलीगेट कहां से आ रहा है, यही भूल गए कि उनका पिकअप भेजना है। अगर कंसंट्रेशन नहीं है तो ये छोटी छोटी चीज ना, वी ऑफन डू वेरी सिली मिस्टेक। हम लोग कई बार ईमेल लिखते हैं और ईमेल में अटैचमेंट डालना ही भूल जाते हैं, और बाद में फोन आता है अरे आपने देखा नहीं अभी तक, पर वो हम अटैचमेंट डालना भूल गए। तो ये बहुत छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स हैं जो हम वी कैन डू विदाउट, इफ वी आर वर्किंग विदाउट अटेंशन। समटाइम वी लूज द थ्रेड। हम कुछ लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, एकदम से ध्यान कहीं और चला गया, वो पूरा का पूरा सेंटेंस ही भूल जाते हैं। जब क्लास ही प्रिपेयर कर रहे होते हैं और दिमाग कहीं और चला गया तो पता चला वो जो पूरा लिखा था ना पिछला, वो क्या था, एकदम से ब्लैंक हो जाता है। कभी कभी किसी का नाम याद नहीं आएगा क्योंकि अटेंशन कहीं और डाइवर्ट हो गई। विदाउट अटेंशन जब हम काम करते हैं तो जो हमारा टोटल आउटकम है, प्रोडक्शन है ना, बहुत शॉर्ट ही होता है। मतलब जो हम, जैसे कि कोई बहुत चाइनीज क्वालिटी का हमने कुछ खिलौना ले लिया, वो घर लाते ही दो दिन में टूट गया, है ना, जो तो आउटकम है ना, जो क्वालिटी है हमारा, वो बहुत ज्यादा पुअर होती है। तो वी मस्ट लर्न टू कंसंट्रेट। जो भी लोग जिंदगी में अच्छे से कंसंट्रेट कर पाते हैं वो जिंदगी में बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंच जाते हैं। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि नहीं, मेरा तो कंसंट्रेशन लगता ही नहीं है, मैं नहीं कंसंट्रेट कर सकता, या दूसरों के बारे में ओपिनियन बनाते हैं कि ये तो कंसंट्रेशन कर ही नहीं सकता है। पर ऐसा कुछ भी नहीं है, दुनिया में एक भी आत्मा ऐसी नहीं है जो कंसंट्रेट ना कर सके। वो कंसंट्रेट किस चीज पर कर रही है, दैट मे बी डिफरेंट, है ना। कोई हो सकता है पूरे दिन सोता है, उसका एक्चुअली कंसंट्रेशन ही उस चीज पर है। तो आप भी जब कोई भी हम अगर याद करें, किसी को भी लगता है मेरा कंसंट्रेशन नहीं बनता, तो अगर हम अपनी पुरानी लाइफ को याद करें तो आपको हर किसी को कुछ ना कुछ ऐसा याद आएगा कि ऐसे मूवमेंट बहुत सारे याद आएंगे लाइफ में जब आप बहुत कंसंट्रेटेड थे। जैसे कि कभी कभी किसी दिन मुरली सुनते हैं, उस दिन मुरली पूरी याद हो जाती है क्योंकि हमारा उस दिन बड़ा कंसंट्रेट, कहेंगे आके आज मुरली बड़ी अच्छी थी, मुरली में सारे पॉइंट, मुरली रोज ही अच्छी होती है लेकिन उस दिन मेरा कंसंट्रेशन बहुत अच्छा था। इस क्लास में ही हम रोज आते हैं, पर जिस दिन कंसंट्रेशन से सुन रहे हैं एकदम अवेक होके सुनते हैं, नहीं लगता मन तो जब दिमाग इधर उधर होता है तो या तो हम सो जाते हैं या फिर कुछ और सोचते रहते हैं, बार बार वापस लाना पड़ता है। अच्छा स्पीकर है फिर कंसंट्रेशन बना रहे हैं तो वो पॉइंट स्पीकर के हो गए, लेकिन आपको अगर कंसंट्रेट, बिकॉज यू आर स्पेंडिंग योर टाइम हियर, आप यहाँ 45 मिनट बैठे हैं तो आपको ये देखना है कि मेरा टाइम वेस्ट ना हो। तो कोई भी स्पीकर कितना भी खराब हो कितना भी अच्छा हो, आर्ट ऑफ लिसनिंग में हमने डिस्कस किया था, आपको ये देखना है कि मुझे उसमें से क्या लेना है। कुछ ना कुछ तो हर कोई बोलेगा, अगर कोई यहां बैठकर कितनी भी देर बोल रहा है तो उसकी बात में कुछ ना कुछ ऐसी चीज जरूर होगी, अगर हम कंसंट्रेशन सुने तो हम उसको ग्रेस्प कर सकते हैं। तो वो दो चीजें होगी, जैसे बाबा बोलते हैं समय को छोड़ दोगे तो समय के मार्क्स हैं, फिर आपके मार्क्स नहीं है, तो स्पीकर पर छोड़ा तो फिर स्पीकर के मार्क्स हैं। तो जब हम अपने योगी जीवन में आते हैं, क्योंकि अभी हमारा वो लौकिक दुनिया से तो थोड़ा सा कट ऑफ हुआ, तो योगी जीवन में भी हमारी योग साधना के लिए भी कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है। अगर हमारा कंसंट्रेशन नहीं है तो योग हमारा कभी भी अच्छा नहीं होगा। जब कंसंट्रेशन की हम बात करते हैं तो जनरली हमारा ध्यान जाता है एक मानसिक एकाग्रता की तरफ, और हमें लगता है कि सारी एकाग्रता का मतलब मानसिक एकाग्रता है, बट एक्चुअली इट्स नॉट ट्रू। मानसिक एकाग्रता जो है वो एकाग्रता का सिर्फ एक पहलू है, और जब एकाग्रता जब भी होती है तो वो भी एक पिन पॉइंटेड होती है, जैसे भी बिंदु पर डिस्कस किया, सारी एकाग्रता मिला के एक पिन पॉइंटेड होती है। अगर पिन पॉइंटेड नहीं है तो वो पूर्ण रूप से अपूर्ण कहलाएगी। फिर आप भले ही कंसंट्रेट करेंगे मेंटली, यू विल ट्राई टू कंसंट्रेट, लेकिन वो फिर भी आप सुन नहीं पाएंगे, बार बार आपका मन इधर उधर जाएगा, कभी आपको लगेगा इंटरेस्टिंग नहीं है, ये नहीं है। तो केवल मानसिक एकाग्रता इंपॉर्टेंट नहीं है, और भी टाइप की जो एकाग्रता है वो बहुत उसमें जरूरी है। तो हम जब भी कंसंट्रेशन करते हैं तो बहुत सारे तत्व हैं जिन्हें की बोलते हैं सीक्रेट ऑफ कंसंट्रेशन। अगर हम उन तत्वों का समावेश अपनी मानसिक पृष्ठभूमि में कर लें तो हमारे लिए बड़ा इजी होता है किसी भी चीज पर कंसंट्रेट करना। तो आज हम वही कोई एक कहा जाता है 12 सीक्रेट्स ऑफ कंसंट्रेशन, उन्हीं 12 सीक्रेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एकाग्रता क्या होती है और कितने प्रकार की होती है थोड़ा ब्रीफ में वो करेंगे। हमारे जगदीश भाई जी का एक बहुत अच्छा क्लास है एकाग्रता के प्रकार, उन्होंने 18 प्रकार की एकाग्रता बताई है, ज्ञान सुधा में भी है और यूट्यूब पर भी है वो क्लास, बहुत अच्छा क्लास है, बहुत सारे एग्जाम्पल दे देकर उन्होंने समझाया। तो जस्ट बिफोर गोइंग टू हाउ टू कंसंट्रेट और सीक्रेट, थोड़ा ब्रीफ में कितने तरह की एकाग्रता होती है वो डिस्कस करते हैं। जैसे आमतौर पर हम सबसे बोलते हैं मानसिक एकाग्रता, बट मानसिक एकाग्रता में भी 4-5 तरह की एकाग्रता आती है। उसमें पहली है वैचारिक एकाग्रता, यानी कंसंट्रेशन ऑफ थॉट्स। हमारे मन का जैसे स्वभाव है कुछ ना कुछ सोचता रहेगा, और मन को बहुत सारी संज्ञाएं दी गई हैं, उसमें एक जो मेन दी है घोड़ा, कि मन एक घोड़ा है। तो अगर हम सोचें कि कोई व्यक्ति एक दो घोड़ों पर सवार है और दोनों ही बेलगाम घोड़े हैं तो उसका क्या हाल होगा, है ना, उसके लिए फिर सारे इंतजाम पहले से करना पड़ेंगे इमरजेंसी वाले। तो मन भी ऐसे ही सोचता रहता है। इवन बाबा ने आप देखो कि क्या कहा है, जो मन है ना वो इसका यज्ञ का नाम क्या दिया है, अश्वमेघ अविनाशी है, रुद्र गीता ज्ञान महायज्ञ। तो वहां भी एक मन को, जो मन रूपी अश्व है ना उस पर ही जीत पाना है, तभी हम स्वराज अधिकारी बन पाएंगे। थॉट्स, कंसंट्रेशन ऑफ थॉट्स क्या है, जब भी हम जिस चीज पर ध्यान कर रहे हैं तो हमारे जो विचार हैं वो सिर्फ उस चीज से संबंधित चलने चाहिए, कोई भी ऐसा विचार नहीं आना चाहिए उस समय जो उससे संबंधित नहीं है या जो टोटली इरेलेवेंट है। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल वो होता है कि हम कई बार मुरली सुन के बाहर निकलते हैं, कैसी थी मुरली, बहुत अच्छी थी, अच्छा कुछ 2-4 पॉइंट बताओ, पॉइंट नहीं बता सकते, कैसी थी, बहुत अच्छी थी, आज तो बाबा ने बिल्कुल ये कहा वो कहा, बट पॉइंट्स हम लाइन नहीं बता सकते, क्यों, क्योंकि हमारा जो मन था ना उस टाइम कहीं भी घूम कर आ रहा था, कभी लंदन घूम कर आ रहा, कभी कहीं और होने वाला था। तो ऐसे कोई थॉट्स जिनसे कि कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है, उनको हमारे को उस समय नहीं सोचना चाहिए। दीज ऑल आर कॉल्ड वेस्ट थॉट्स। उन वेस्ट थॉट्स पर विजय पाना सबसे पहला चरण है कंसंट्रेशन के लिए। दूसरी जो एकाग्रता है मानसिक में, वो है संबंधात्मक, रिलेशनशिप। अभी हमारे जो कलयुग में जब हम थे, तो हमारे कितने सारे संबंध हो गए हैं, इतने सारे संबंध हैं कि उनको याद रखना भी कई बार मुश्किल होता है। सतयुग में जब हम आते हैं, तो हमारे संबंध बहुत कम होते हैं। और अभी संगम पर बाबा ने क्या कहा, सिर्फ एक ही संबंध रखना है, जो भी है सारे संबंध। इवन बाबा ने बाप, टीचर, सदगुरु भी तीनों अकेला ही बन गया। उसने ये नहीं रखा कि बाप ये, टीचर ये, सदगुरु ये, सिर्फ एक से ही संबंध। तो अगर एक से संबंध रखेंगे तो यू विल बी एबल टू कंसंट्रेट। अगर बहुत सारे संबंध होंगे तो आपकी जो एनर्जी है वो ऑब्वियसली डायल्यूट होगी, और फिर आप यू वोंट बी एबल टू कंसंट्रेट। तो बाबा कहते हैं एक को ही देखो, एक को ही याद करो, एक ही के साथ सारे संबंध निभाओ। दिस इज कॉल्ड संबंधात्मक एकाग्रता। तीसरी है ऐच्छिक एकाग्रता, जो मानसिक एकाग्रता के अंडर में आती है। ऐच्छिक यानी इच्छाओं की एकाग्रता। बाबा कहते हैं इच्छा मात्रम अविद्या बनना है, यानी कोई इच्छा ही नहीं होनी चाहिए। इच्छा क्या होती है इस बात की भी अविद्या हो। लेकिन अभी हमने देखा है कि इच्छा के बिना मनुष्य जीवन संभव ही नहीं है। अगर इच्छा नहीं है तो वो मुर्दा है, उसको उठा करके फिर जलाना पड़ेगा। तो इच्छा तो है, तो हम कौन सी इच्छाएं रखें, है ना। तो इसके लिए फिर बाबा ने बताया कि हमें ऐसी इच्छाएं रखनी है जो हमारा मार्ग मुक्ति और जीवन मुक्ति की तरफ ले जाती है। इसके अलावा कोई भी इच्छा है तो बाबा बोलता है वो बिल्कुल वेस्ट है। आपको सिर्फ बाबा के अलावा आपकी जिंदगी में और कोई इच्छा होनी ही नहीं चाहिए। और जब तक इच्छाएं, अगर इच्छाओं रूपी घोड़े पर आप सवार है, मनुष्य सवार है, तो वो फिर कुछ भी चीज पर कंसंट्रेट करना बड़ा मुश्किल है। एक बड़ा अच्छी स्टोरी उसमें दी हुई थी सिकंदर के बारे में। जब सिकंदर पूरा आक्रमण जीत जात के सारी कंट्रीज को इंडिया की तरफ आ रहा था, तो वो अपने गुरु के पास गया और गुरु से पूछा कि आपके लिए क्या लेकर आए। तो गुरु बोले क्या लाओगे, बोले आप जो बोले, हम सिकंदर हैं, हम जो चाहें वो लेकर आ सकते हैं आपके लिए। तो गुरु ने बोला अच्छा ऐसा करना, एक वहां से इंडिया का एक योगी लेकर आ जाना। तो सिकंदर तो पूरी तरह पूरा वर्ल्ड जीत रहा था, तो उसने बोला इसमें क्या है, हम एक योगी उठा लाएंगे। तो सिकंदर इंडिया में आया, उसने जब ये सब जीता तो फिर पूछा मुझे है ना, मुझे एक योगी चाहिए। तो लोगों से पूछा, बताया कि योगी क्या होता है। तो लोगों ने कहा मुश्किल है। तो बोला सिकंदर के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, आप बताइए। तो उन्होंने उसको एक योगी का पता दे दिया। सिकंदर कहता है ठीक है मैं अपने सिपाही भेजता हूँ। बोले नहीं नहीं, उनके पास आपको खुद ही जाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे रिवाज होता था ना, जैसे राजाओं को निमंत्रित करना है तो आप किसी के थ्रू नहीं कर सकते, आपको खुद ही लेकर जाना होता है। ऐसे योगियों के भी रीति रिवाज है। सिकंदर ने कहा ठीक है, गुरु ने बोला है तो जाना तो पड़ेगा। तो वो एक दुभाषिये को लेकर वो योगी के पास गया। योगी अपने बैठे थे, वो लंगोट बांधे, कुछ भी नहीं। सिकंदर वॉज थिंकिंग कि पता नहीं जाने कितना बड़ा उसका महल होगा, जाने कितना बड़ा चीज होगा, मेरे गुरु ने मांगा है, पता नहीं कितने वैभव होंगे उसके। वहां पहुंचे तो वो एक लंगोट में बैठा हुआ अपनी तपस्या में मगन। तो सिकंदर को बताया गया कि यही योगी है। तो बोले इसको ले जाने में भी दिक्कत आएगी क्या। तो उन्होंने वो दुभाषिये को, दुभाषिये के थ्रू बोला कि मैं, पर उसको बता दिया गया था सिकंदर को हाथ जरूर जोड़ लेना, अगर हाथ नहीं जोड़े ना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए ले जाना। तो सिकंदर ने हाथ जोड़ के बोला कि मैं ऐसे ऐसे हूं और सारी दुनिया मैंने जीत लिया है, और मेरे गुरु ने बोला है कि एक योगी लेकर आना, तो मैं आपको बाय इज्जत आमंत्रित कर रहा हूं, आप मेरे साथ चलो। तो योगी उसको देखता रहा। सिकंदर बोलता है मैं आपको ये दूंगा ये दूंगा, एक एक करके चीजें बताने लगा। योगी देखता ही रहा, कुछ बोला ही नहीं। फिर अल्टीमेटली लास्ट में वो सिकंदर यहां तक बोला कि मैं आपको अपना आधा राज्य दे दूंगा पूरा जीता हुआ। तो योगी उठ के खड़ा हुआ, हाथ जोड़ के बोलते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए राजन, ये सब चीजें तो आपको चाहिए थी, आप ले जाओ। तो सिकंदर ऐसे ये सब वार्तालाप चल रहा था, तो सिकंदर अल्टीमेटली उसको मना नहीं सका कि ले जाने के लिए कुछ भी प्रलोभन देके। तो सिकंदर को फिर ये थॉट आया कि जिन चीजों को पाने के लिए मैं इतने लोगों को मारता आ रहा हूं, इतने लोगों के बद्दुआएं लेता आ रहा हूं, अपने घर सगे संबंधी सबको छोड़कर आ रहा हूं, वो चीजें मैं इसको फ्री में दे रहा हूं, तब भी ये बिल्कुल भी लेने तैयार नहीं है। तो इसके पास ऐसा क्या है कि इसको इन सब किसी चीजों की इच्छा ही नहीं है। तो सिकंदर के जीवन में जो परिवर्तन आया वो सब उसकी सोच में, जीवन में तो कुछ खास परिवर्तन नहीं आया, उसकी सोच में जो परिवर्तन आया वो इन्हीं घटनाओं के बाद आया। तो बाबा बोलते हैं हमें भी क्या है, कोई इच्छा नहीं रखनी है, बिना किसी इच्छा के भगवान की याद में टिक जाना, यही क्या जो बेस्ट उच्च कोटि का जो योग है वो यही है। भगवान के पास भी जाके क्या होता है, कई बार जब नॉलेज कम होती है तो हम भी जाके फिर अपनी वो पूरी लिस्ट फाइल लेके जाते हैं, ये हो जाए ये हो जाए ये हो जाए ये हो जाए, और कुछ नहीं तो दूसरी आत्माओं के लिए ये हो जाए वो हो जाए। एक्चुअली इस सब किसी चीज की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसकी याद में टिक जाना ही उच्च कोटि का योग है। ऐसे ही महाभारत के टाइम भी देखा होगा कि जब लड़ाई हो रही थी तो अर्जुन और दुर्योधन दोनों कृष्ण के पास गए, कृष्ण उस समय सो रहे थे, तो अर्जुन सर के पास जाके खड़ा हो गया और दुर्योधन पैर के पास जाके खड़ा हो गया। अच्छा उसमें तो लिख तो जब आंख खोली तो, लेकिन ऐसा बोलते हैं जब आंख खोली तो जो पहला दिखाई दिया वो दुर्योधन था, तो भी जो भी है तो पहला चांस दुर्योधन को मिला कि हम पॉइंट पर आते हैं, पहला चांस दुर्योधन को मिला कि जो चाहो वो मांग लो, तो दुर्योधन ने पूरी नारायणी सेना मांगी। और अर्जुन के लिए क्या बचा, अर्जुन से जब पूछा तो बोला मुझे तो आप ही चाहिए। तो मतलब जिस तरफ भगवान है, फिर रिजल्ट सबने देखा ही ना कि जीत किसकी हुई, तो जिस तरफ भगवान है उस तरफ और किसी चीज की चाह रखने की जरूरत नहीं है। ये कहानी है लेकिन, है कृष्ण भगवान नहीं है, देवता है। तो जो सबसे बड़ी गुलामी है जीवन में, बाबा बोलते हैं वो इच्छाओं की गुलामी। अगर आप इच्छाओं की गुलामी से एक बार निकल गए तो आप स्वराज अधिकारी बहुत इजीली बन सकते हैं। तो ये मानसिक एकाग्रता में जो चौथी एकाग्रता है वो है लक्ष्यात्मक, टारगेट। जो आपका टारगेट है वो हमेशा एक होना चाहिए। अगर टारगेट हमारा अचल अटल नहीं है, बार बार टारगेट बदलता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, तो कंसंट्रेशन बनना बड़ा मुश्किल है। जैसे इतने सारे सत्संग दुनिया में है, इतने सारे स्पिरिचुअल वो है, कहीं भी देख रहा होगा कोई टारगेट है ही नहीं किसी के पास, कोई टारगेट देते ही नहीं है। और यहां हम जब आते हैं तो सबसे पहला काम क्या होता है, जो 7 दिन का कोर्स होता है उसी टाइम एक फॉर्म भराते हैं, वो फॉर्म में पूछते हैं आपका एम ऑब्जेक्टिव क्या है। तो जब तक एम ऑब्जेक्टिव नहीं होगा तब तक आप कंसंट्रेट कभी भी नहीं कर सकते। बाबा ने बिल्कुल दो बात बहुत क्लियर कही है कि एक है जैसा चित्र वैसा चरित्र। तो आप जैसे कुछ लोग पॉकेट में किसी का चित्र रखते हैं, कोई किसी का रखता है, तो वो जैसा चित्र रखते हैं उस हिसाब से उनके चेंजेस भी उनके अंदर आने शुरू हो जाते हैं। इवन बाबा का ही देखो, बाबा के पॉकेट में हमेशा नारायण का चित्र रहता था, तो उनका एक्चुअली शुरू से ही उनका जो पूरा वो था वो इंक्लाइनेशन इट वॉज टूवर्ड्स दैट। तो जैसा चित्र होता है, जैसा हम सोचते हैं वैसा हमारा चरित्र बनता जाता है। उसके लिए एकलव्य का है एग्जाम्पल बहुत अच्छा। एकलव्य अर्जुन से भी अच्छा धनुर्धर था, पर एकलव्य को किसी ने सिखाया नहीं। जब एकलव्य प्रैक्टिस कर रहा था तो वहां से निकले तो उनसे पूछा कि तुमको किसने सिखाया, भाई अर्जुन को तो द्रोणाचार्य ने सिखाया, एकलव्य को किसने सिखाया। तो वो एकलव्य बोलता था कि मेरे तो दिल में है ना द्रोणाचार्य की तस्वीर है, और बस उसी से मैं सब कुछ सीख गया हूं। तो जैसा चित्र उस हिसाब से हमारे चरित्र। और दूसरी बात जो बाबा ने बोली वो थी लक्ष्य, जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण। हम जैसा टारगेट रखेंगे, जो लक्ष्य हम रखेंगे जिंदगी में, उस हिसाब से हमारे लक्षण, हमारे जिंदगी में कैरेक्टरिस्टिक अपने आप आते जाएंगे। लक्ष्य लक्षण है, तो जैसे उसमें लक्ष्मण रेखा का व्याख्यान दिया है, वो डिटेल हम जाएंगे तो फिर मेन चीज से भटक जाएंगे, वो क्लास में सुन सकते हैं। तो जैसा लक्षण है वैसे लक्ष्मण रेखा आती जाएगी। दूसरे टाइप की जो एकाग्रता है वो है बौद्धिक एकाग्रता। ये मानसिक एकाग्रता थी उसके टाइप थे, दूसरी है बौद्धिक एकाग्रता। बौद्धिक मानसिक एकाग्रता से हमारा मन है ना अचल अडोल होता है। बाकी दूसरे टाइप और चीजों के लिए, जैसे क्लास में सिर्फ हमने कंसंट्रेशन थॉट्स का रखा तो भी कई बार मन भटकता है, तो बौद्धिक एकाग्रता उसमें जरूरी है। उसमें एक आती है निश्चयात्मक एकाग्रता। एकाग्रता हमेशा होगी निश्चय से। हम ज्ञान में आए, ज्ञान में भी आके सब लोग नहीं टिक पाते हैं, बहुत से चले जाते हैं। टिक कौन पाते हैं, जिनको निश्चय होता है कि ये जो बता रहे हैं ये ही एक्चुअली जीवन का सच्चा मार्ग है। अदरवाइज बुद्ध से किसी से बोल दो मनुष्य से देवता बनाएंगे आ जाओ, तो लोग हंसेंगे आपके ऊपर कई बार, लेकिन जब वो आकर के समझता है और उसको सारी चीजें बताते हैं एक एक करके, उसके दिमाग में बिल्कुल फिट बैठ जाता है कि सच्चा रास्ता यही है, वट एवर दे आर सेइंग इज ट्रुथ, तब वो जाकर के ज्ञान में टिकता है। तो किसी भी एकाग्रता को बनाने के लिए निश्चय होना बहुत जरूरी है। निश्चय नहीं होगा तो वो बिल्कुल बेपेंदी का लोटा है। आज आप बोल रहे हो आपकी सुनेगा, कल किसी दूसरी जगह जाएगा बोला वो सही लग रहे हैं ज्यादा, तीसरी जगह जाएगा बोला इनका मेडिटेशन ज्यादा अच्छा है, तो फिर वो कभी भी फिक्स नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ एक निश्चय होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मनुष्य से देवता बनना हम भी तभी शुरू करते हैं जब हमें पूरी तरह विश्वास हो जाता है कि हाँ ये बिल्कुल सही है, यही रास्ता है। फिर जब हम सोचते हैं तो फिर हम उस हिसाब से आगे चलना शुरू करते हैं, नहीं तो फिर ट्रेटर बन ही जाते हैं। दूसरी है कंस्ट्रक्टिव, हमारी जो बुद्धि है ना वो कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, डिस्ट्रक्टिव नहीं होना चाहिए। कंस्ट्रक्टिव यानी कि हमारी बुद्धि जोड़ने वाली होना चाहिए। अगर हमारा दिमाग डिस्ट्रक्टिव तरफ जा रहा है तो हम डेफिनेटली थोड़े दिन में उन चीजों से भटक जाएंगे। कंस्ट्रक्टिव यानी जोड़ने वाली एकाग्रता कहते हैं। तो हम जानते हैं जैसे अभी हम अलौकिक जीवन की बात करें कि हमें मालूम है यहां सभी बाबा के बच्चे हैं ना, हम भी योगी हैं वो भी योगी, हम भी ज्ञानी वो भी ज्ञानी, पर अगर अभी हम एक दूसरे को क्रिटिसाइज करने लगते हैं कई बार, एक्चुअली जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है वो भी अलाउड है, लेकिन ज्यादातर जो क्रिटिसिज्म है वो डिस्ट्रक्टिव है। जब हमें लगता है कि हम किसी से जल रहे हैं, किसी से हमारे को ईर्ष्या द्वेष होती है, वो हमसे आगे जा रहा है, तो हम उसके बारे में फिर ऐसी ऐसी बातें बोलने लगते हैं कि वो जब तक वो आगे नहीं जा रहा था उसके बारे में सब सही चल रहा था, लेकिन वो जैसे ही आगे जाने लगा तो हम उसके बारे में बहुत सारी बातें बोलने लगते हैं। कभी कभी हमने देखा है कोई दो लोगों में लड़ाई हुई है तो उनके उनको एक दूसरे को जाके में ऐसी ऐसी बातें लोग करने लगते हैं कि उनकी दरार और बढ़े। तो ये सब जो है ना वो डिस्ट्रक्टिव बुद्धि वाले वो कभी भी एकाग्र नहीं हो सकते। तो हमारे को ये बहुत अटेंशन देना है कि हम जब भी अगर क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं तो क्रिटिसिज्म शुड बी कंस्ट्रक्टिव। कहानी है जैसे पुराने जमाने में एक दर्जी था, तो उसका बच्चा उसके पास आया, बोलता है बाबा मेरा कुर्ता फट गया है जरा इसको सिल दो। तो पुराने जमाने में क्या होता था, जो दर्जी सभी लोग पगड़ी पहनते थे, कोई भी हो गरीब से गरीब भी, और सिर्फ केवल जब बहुत ज्यादा घरों में कोई दुख हो कोई मर गया हो तो उसी टाइम पगड़ी उतारते थे, अदरवाइज सब लोग पगड़ी पहनते थे। तो दर्जी ने बोला ठीक है लाओ, उसने कुर्ता लिया और उसकी पगड़ी में सुई रखी थी, वहां से सुई निकाली और कुर्ते को सिल दिया और बच्चे को दे दिया, बोले हो गया। बच्चा जाने लगा तो उसने देखा एक धागा उसमें लटका रह गया, तो उसने कहा बाबा इसको भी काट दो। तो दर्जी ने बोला ठीक है, तो उसने कैंची निकाली, कैंची कहां रखी थी, उसके पैर के नीचे, तो पैर के नीचे से कैंची निकाल के धागा कर दी। तो बच्चा पूछता है बड़ा आपने सुई जैसी चीज तो यहां लगा रखी है जो लग भी सकती है, और कैंची जैसी बड़ी चीज है वो पैर के नीचे रखी हुई है, ऐसा क्यों? तो दर्जी ने जो जवाब दिया बड़ा सुंदर था कि सुई जो है ना वो जोड़ने का काम करती है और कैंची जो है वो काटने का काम करती है। जो चीजें जोड़ती हैं उनको हमेशा ऊंचा स्थान देना चाहिए, अपनी पगड़ी से भी ऊपर रखना चाहिए। उस पगड़ी मतलब पगड़ी बहुत सम्मान की बात मानी जाती थी, तो जोड़ने वाली चीजों को ऊपर रखते हैं और काटने वाली चीजें उनको हमेशा पैर के नीचे दबा के रखना चाहिए। तो ये हमारे को भी देखना है कि जो हमारी बुद्धि है ना वो हमेशा कंस्ट्रक्टिव हो, तब हमारी तो जो बौद्धिक एकाग्रता है वो कंस्ट्रक्टिव है। फिर और जो टाइप है उसमें एक है विरामात्मक एकाग्रता, जिसके ऊपर की आज अभी पूरा 15-20 मिनट हमने सुना है, फुल स्टॉप है, तो उसके बारे में अभी बहुत ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो बाबा ने तीन बिंदु बताए उसमें से एक बिंदु है फुल स्टॉप। फुल स्टॉप लगाना आना चाहिए तुरंत, तभी कंसंट्रेट कर सकते हैं। फिर आती है भावात्मक एकाग्रता, यानी कंसंट्रेशन ऑफ इमोशंस, इमोशनल स्टेबिलिटी जिसे बोलते हैं। हमारा मूड जैसे कई बार देखा होगा दिन में कई सारे फ्लक्चुएशंस आते हैं, कभी बहुत अच्छा आनंद में है, कभी बहुत उदास हो रहे हैं, कभी किसी से किसी के लिए घृणा आ रही है, द्वेष आ रहा है, कभी किसी के लिए बड़ा प्यार आ रहा है। तो ये जो फ्लक्चुएशंस है मूड में ये कभी भी अच्छे नहीं है। जब तक ये फ्लक्चुएशंस होते रहेंगे हम कभी भी एकाग्र नहीं हो सकते। जैसे उसका एक बहुत बड़ा देखना है कि जो योगी है ना उसकी क्वालिटी है कि वो सदा आनंद में रहना चाहिए। इसलिए पुराने जमाने में जब कोई योगी सन्यासी बनता था तो हमेशा उसके नाम के आगे आनंद लगाते थे, उनका नाम चेंज करते थे, है ना। देखा होगा जैसे आर्य समाज के संस्थापक है महर्षि दयानंद, एक्चुअली उनका मेन जो मूल नाम था वो तो मूल शंकर था, ऐसे विवेकानंद, विवेकानंद का जो ओरिजिनल नाम था वो नरेंद्र था, पर उनको रामकृष्ण परमहंस ने उनका नाम विवेकानंद रखा। तो देखा हुआ परमात्मा को हम बोलते हैं सच्चिदानंद। जो परमात्मा की जो एक मेन क्वालिटी जो उसको सब आत्माओं से अलग करती है वो है आनंद। परमात्मा सदा आनंद स्वरूप है, सच्चित आनंद स्वरूप। आत्माओं का आनंद का लेवल ऊपर नीचे होता है, पर परमात्मा का आनंद का लेवल कभी भी ऊपर नीचे नहीं होता। उसी में एक और एग्जांपल आता है, जैसे जो फिर भक्त लोग होते हैं ना वो अपने नाम के आगे दास लगाते हैं ना, बालक दास, ये गरीब दास, ये दो, तो वो दास वर्ड यूज नहीं करना है, हमारे को तो आनंद वाला वर्ड यूज करना है। इसमें एक आती है जो भावनात्मक या भावात्मक एकाग्रता है, उसमें एक आती है प्रीत्यात्मक एकाग्रता, कि किसी से प्रीत रखनी है। हमारे को सभी से प्रीत रखनी है, किसी से द्वेष नहीं है, सबसे प्रीत है। लेकिन हमारी जो प्रीत है ना वो कैसी होनी चाहिए, उसका एक तुलसी जी का एक बहुत अच्छा दोहा है, तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग सबसे मिलजुल रही है, नदी नाव संजोग। तो उसमें नदी और नाव का एग्जाम्पल है कि नदी और नाव की प्रीत रहती है, लेकिन वो प्रीत एकदम बैलेंस्ड है। नदी जब भी जरूरत है नाव नदी में जाएगी, लोगों को उतारेगी और वापस अपने किनारे लग जाएगी। अब अगर यही इसको थोड़ा सा वैसे लेते हैं, प्रीत ज्यादा हो गई, नदी की प्रीत नाव से कहीं ज्यादा हो गई तो क्या होगा, नाव गई भंवर में डूब जाएगी, या नाव की नदी से ज्यादा हो गई तो क्या होगा, नदी नाव में आई तो भी डूब जाएगी। तो प्रीत ज्यादा आई तो वो सिर्फ डूबेगी। तो प्रीत जो है वो न्यारे प्यारे टाइप की रहना चाहिए, जैसे बाबा बोलते ना न्यारे और प्यारे, जितने न्यारे बनेंगे उतने प्यारे बनेंगे, तो वो नदी नाव की तरह होना चाहिए हमारी। एक और इसमें आती है मान और स्वमानात्मक एकाग्रता। हमें सब आत्माओं को मान देना है, चाहे वो छोटा बच्चा है चाहे कुछ भी है, क्योंकि ये पता नहीं कौन सी आत्मा कौन से जन्म में क्या है ना। एक ही जन्म में एक आत्मा देखो नारायण है, फिर वही आत्मा फिर से राजा बनी, और फिर वही आत्मा सिंपल लेखराज बन गई। तो आपको नहीं पता कि कौन सी आत्मा क्या किया है। पिछले जन्मों में उसने आपको हो सकता है डूबने से ही बचाया हो, आपको मरने से बचाया हो सकता है वो आपका डॉक्टर रहा हो, आपका कुछ और रहा हो, बचाया हो आपको, और अभी वो आपके सामने कुछ और बन के आ गया और आप उसके साथ गलत बिहेव कर दो, तो ये आपको फिर जब पता चलेगा रियल में इसने ऐसा किया तो मैंने इसके साथ ऐसा किया तो कैसा लगेगा। तो कोई भी आए उसको मान जरूर देना है और खुद स्वमान में रहना है, वही अपने आप को भक्त वाला दास नहीं बनाना है, स्वमान में रहना है, अभिमान में नहीं आना है। फिर अगेन अभिमान एक अलग चीज है कि इसको मैं देख लूंगा, इसका ये कर दूंगा, वो नहीं, स्वमान में रहना है। जब हम स्वमान में रहेंगे तो हम सबसे अच्छा बोलेंगे, सबके लिए अच्छा सोचेंगे, फिर ऑब्वियस है कि हमारे लिए कुछ बुरा अपने आप ही नहीं आएगा, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारे लिए आता जाता है। एक और इसमें जो एकाग्रता है उपरामात्मक एकाग्रता। बाबा बोलते हैं हमारा जो लंगर है ना वो इस दुनिया से उठा रहना चाहिए, यहाँ पर हम एक मुसाफिर हैं, इस दुनिया में मुसाफिर खाना है, और मुसाफिर का कभी भी किसी चीज से भी लगाव नहीं होता है। तो हमारे अभी बुद्धि का जो लंगर है ना वो उठा रहना चाहिए, हमारे शरीर से भी बाबा बोलता है कि हमारा कोई वो नहीं होना चाहिए, इवन शरीर से भी हम डिटैच्ड होने चाहिए। फिर है स्मृतियात्मक मेमोरी कंसंट्रेशन, हमारी स्मृति कैसी होनी चाहिए, क्योंकि ये सारा खेल जो पूरा विश्व नाटक है बाबा बोलते हैं सारा स्मृति और विस्मृति का ही खेल है। बाबा ने अभी हमें आके क्या सिखाया, सिर्फ स्मृति तो दिलाई है कि बच्चे तुम क्या थे और तुम क्या बन गए हो। तो इसमें स्मृति में हमारी एकाग्रता बहुत होनी चाहिए, जितना ज्यादा हम एकाग्र हमारी स्मृति में होंगे उतना ही वो आत्मा समर्थ होगी, इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना आपकी स्मृति कंसंट्रेटेड रहेगी या फिक्स रहेगी उतना ही आत्मा के अंदर जो समर्थि है वो ज्यादा से ज्यादा आती जाएगी। अब स्मृति किसकी रखनी है ये बहुत ध्यान रखना, क्योंकि स्मृति में तो कुछ भी आ सकता है, स्मृति घर की भी हो सकती है, बच्चों की भी हो सकती है, फैमिली की हो सकती है, लेकिन हमारे को बाबा ने क्या स्मृति बनाई, तीन, आत्मा परमात्मा और ब्रह्मा, ये तीन स्मृति हमारे को रखनी, परम धाम, तीसरी स्मृति जो एक्चुअली परम धाम, कि मैं आत्मा कहां से आई हूं, किसकी संतान हूं, कहां की रहने वाली हूं, क्या मेरा लक्ष्य है। अगर यही स्मृति है तो आपका योग मतलब निरंतर योगी हो गए, कभी टूटेगा ही नहीं। तो इस स्मृति को बहुत कंसंट्रेटेड करना है। उसी के लिए जैसे बस में बैठे हुए ना, बस में कंडक्टर पूछ रहा है कि आपको कहां जाना है, और आप बोलो कि मुझे पता नहीं कहां जाना है, तो कहां जाएंगे। तो हमारे को भी पूरे टाइम ये स्मृति रहना चाहिए कि हम तो लास्ट स्टॉप कौन सा है ये भी पता है, कि हम कौन है, कहां से आए और किसकी संतान है और कहां जाना है। जो लास्ट एक एकाग्रता जो मुझे मिली है वो है सुखात्मक। ये आत्मा को बड़ा ध्यान रखना है कि उसे कभी भी ऐसी कोई बातें याद नहीं करनी है जिससे कि आत्मा को दुख हो। मेरी जिंदगी में कोई आत्मा ऐसी नहीं है कि जिसकी पूरी जिंदगी में सिर्फ दुख ही दुख रहा हो, सुख का कोई पहलू कभी ना रहा हो। तो हमारे को जब भी याद करना है सिर्फ उन्हीं सर्कमस्टांसेस को याद करना है जब आत्मा खुश थी या सुखी थी। जो जिन सर्कमस्टांसेस से दुखी थे उनको कभी भी याद नहीं करना है, उनको याद करने का कोई फायदा भी नहीं है। लेकिन क्या होता है, हम एक दुख तो हो गया पर उसी दुख को बार बार याद करके उस दुख को कई गुना करते जाते हैं, तो उसके लिए वो आत्मा का नेचुरल गुण नहीं है। तो हमारे को ये हमेशा याद रखना है कि हम अगर बैठे बैठे कभी पुरानी बातें याद भी कर रहे हैं तो सिर्फ उन बातों को याद करना है जिनसे कि आत्मा को सुख मिला या फिर पॉजिटिव, जिससे आत्मा को समर्थि मिली। तो ये थोड़ा एक ब्रीफ में डिफरेंट टाइप ऑफ एकाग्रता थी और उसमें कि कैसे कंसंट्रेट करना है वो भी था। अब जो थोड़ा लौकिक दृष्टि से जो 12 सीक्रेट्स जो दिए हुए हैं, हाउ टू कंसंट्रेट, 12 सीक्रेट्स ऑफ कंसंट्रेशन, उनमें से अब एक एक करके लेते हैं। उसमें जो पहला है वो है फाइंड द पर्पस इन योर लाइफ, इन योर वर्क। आप जो भी काम कर रहे हैं या जो भी आपने जिंदगी में एक एम ऑब्जेक्टिव बनाया उसमें एक पर्पस आपको ढूंढना है। जैसे हम भी जब ज्ञान में आए तो देखा होगा कि पूजा तो भक्ति मार्ग में भी कर रहे थे, तो हम क्या करते थे, पूजा करते थे, उनके अभिषेक करते थे, कीर्तन करते थे, भोग लगाते थे, नहलाते थे, धुलाते थे, सब कुछ करते थे और उसी में खुश होते थे कि भगवान को खुश हो जाए, हम तो उसी में खुश हैं। लेकिन बाबा ने आके क्या बताया कि आपको पूजा नहीं करनी है, आपको पूजन योग्य बनना है। तो एक पर्पज मिल गया हमारे को, कि हमारा जो काम है अगर हम पूजा भी कर रहे थे तो उसमें एक पर्पज हमारे को आ गया कि अब हमें इनके जैसा बनना है। जब तक पर्पज नहीं था तो हम बस उनको कर करके खुश थे, लेकिन जब पर्पज मिल गया तो फिर हमारा जो मार्ग है वो चेंज हुआ। ज्ञान बोले हमें इनकी पूजा नहीं करनी है बल्कि इनके जैसा बनना है। तो जब भी कुछ जिंदगी में टास्क अगर कंसंट्रेशन करना है तो वो आपकी लाइफ बन जानी चाहिए। सोते जगते खाते पीते बैठते उठते हर समय सिर्फ एक वही थॉट चलना चाहिए। वो बोलते हैं आपकी ब्रेन से लेकर के आपकी मसल नर्व एवरीवेयर आपकी बॉडी में सब जगह वही थॉट्स घूमना चाहिए, वो आपकी जिंदगी बन जाना चाहिए। तो फिर ऐसा है नहीं कि आप उस चीज को फिर पा ना सको। तो ये पहला सीक्रेट है। दूसरा प्लान, पहले से योजना बनाना है। कुछ भी वर्क कर रहे हैं तो उसको स्टार्ट करने से पहले योजना बनाना है। वो इतना बड़ा कॉन्फ्रेंस का एग्जाम्पल मैंने दिया, अभी कॉन्फ्रेंस करनी है, बस बैठ गए एक सर्कुलर निकाल दिया, कॉन्फ्रेंस करनी है तो कॉन्फ्रेंस कभी नहीं होगी। उसमें कितना सारा प्लान है कि कहां से क्या आएगा, कौन किस टाइप की हेल्प करेगा, कहां से कोई इन्फॉर्मेशन मिस तो नहीं हो रही है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। कैसे डेलीगेट्स आएंगे, कैसे उनको कहां ठहराना है, किसको किस कैटेगरी में ठहराना है, ये सब कंसंट्रेशन का काम है। तो जब भी कुछ करना है जिंदगी में प्लानिंग बहुत जरूरी है। ऐसे ही एकदम उठ के रैंडमली करेंगे तो मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो जो दूसरा सीक्रेट है वो है प्रॉपर प्लानिंग। एक और है इसमें, टेक रेगुलर ब्रेक्स। ऐसा नहीं है कि एक बार एक कुछ काम मिल गया तो हम बस जाके अपनी डेस्क पर बैठ गए और पूरे टाइम सिर्फ उसी काम में लगे हुए हैं, फुल पूरा का पूरा यही कर रहे हैं। बीच बीच में ब्रेक्स लेना बहुत जरूरी है। साइंटिफिकली भी बोला गया जो लेक्चर्स का ड्यूरेशन है वो 35 to 45 मिनट रखा जाता है, क्योंकि एक एवरेज ह्यूमन जो है वो 45 मिनट से ज्यादा एट ए टाइम कंसंट्रेट नहीं कर पाता है। मतलब एक्सेप्शंस है, फिर स्पीकर का भी रोल है कभी कभी स्पीकर अच्छा होता है तो हम 1.5-2 घंटे सुनते रहते हैं विदाउट इंटरप्शन कम पड़ जाता है। बट जब नॉर्मल एवरेज बात करते हैं तो 45 मिनट इज द टाइम वेयर ब्रेन कैन कंसंट्रेट, आफ्टर दैट इट नीड्स ए ब्रेक। तो ये जितने सारे ब्रेक बनाए होते हैं, कॉफी ब्रेक, ट्री ब्रेक और लंच ब्रेक, इसीलिए बनाए जाते हैं। ब्रेक होना बहुत जरूरी है। वैसे भी अगर आप देखो, आपको ये पता हो कि आफ्टर हाफ एन आवर ब्रेक होने वाला है तो जो आपकी एफिशिएंसी है बहुत बढ़ जाती है ना। अभी ओपीडी आप 12:30 बजे देखो, आप 12:30 से लेकर 1 बजे तक जो आप ओपीडी देखते हो ना वो बहुत चेंज होती है, उसमें आपकी स्पीड बहुत अच्छी होती है, क्योंकि मालूम है आपको 1 बजे ब्रेक होने वाला है। तो जो ब्रेन है ना उसकी साइकिलिंग वही है कि आधे घंटे बाद ब्रेक मिलना ही है, तो वो आधे घंटे में फिर जो उसकी एफिशिएंसी है ना वो ऑलमोस्ट डबल स्पीड से काम करता है। 9 बजे से लेकर 12:30 तक आप अलग ढंग से पेशेंट देखेंगे और 12:30 से 1 बहुत अलग देखेंगे। तो ब्रेन को अगर ये पता भी है ना कि उसे ब्रेक मिलने वाला है तो बड़ा खुश होकर काम करता है उसकी। पॉजिटिव सोचना है, सकारात्मक सोचना। तो जो शॉर्ट पीरियड के जो ब्रेक है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एक और जो तरीका है, शट योर ऑफिस डोर, ऑफिस का दरवाजा बंद कर दीजिए। लेकिन सब पॉसिबल नहीं है, कई बार हमारे ऑफिस ही ऐसे हैं जिनमें दरवाजा ही नहीं है ना? तो उस केस में क्या करना है? बट मतलब यू कैन ऑलवेज फाइंड ए वे। हाँ, बहुत सारे और दूसरे भी तरीके हैं। जैसे आप घर में बैठे हैं, अपने फैमिली मेंबर बच्चों को बोल सकते हैं, कोई भी आए मना कर देना कि अभी वो किसी चीज पर कुछ किसी चीज में व्यस्त हैं, किसी चीज पर फोकस कर रहे हैं। आप चल रहे हैं, जैसे कहीं जा रहे हैं, रास्ते में शोर हो रहा है, तो यू पुट हेडफोन, एयरपोर्ट पर बैठ गए, हेडफोन लगा के सुन रहे हैं, क्लास सुन रहे हैं अपनी। तो वो दिस आर द वे, दिस इज लाइक शट योर ऑफिस डोर। बीच बीच में ये सब भी करना चाहिए, जब मुझे कंसंट्रेट करना है तो सब चीजें बाकी की बंद। पांचवा एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, ईट एनफ बट नॉट टू मच। खाना बहुत जरूरी है ना, आप हाइपोग्लाइसेमिक होंगे तो भी आपका जो मूड है ना वो एकदम खराब होता जाएगा, आप बहुत इरिटेट होंगे, आपके जो डिसीजंस है वो बड़े खराब होंगे। लेकिन एट द सेम टाइम अगर बहुत ज्यादा खा लिया है तो जब स्टोमक ग्राउंडिंग करेगा ना तो भी आप कंसंट्रेट नहीं कर सकते। तो बैलेंस रखना है, जो हमारा खाने का जो तरीका है ना उसको स्पेसिंग करना है। ऐसा नहीं कि सुबह आज एक बार अच्छे से तगड़ा ब्रेकफास्ट कर लो फिर पूरा दिन देखेंगे। तो जैसे ही आप जाते हो तो आपको फिर नींद आने लगती है थोड़ी देर बाद। तो खाने का स्पेसिंग, मतलब खाना भी जरूरी है लेकिन उसको किस तरीके से खाना है वो भी आपकी कंसंट्रेशन में बहुत इफेक्ट डालता है। जो नया एक ऐड हुआ है वो टर्न ऑफ योर इंटरनेट कनेक्शन। आपको कुछ तैयारी करनी है, कोई चीज कंसंट्रेट करना है तो आप इंटरनेट को डिस्कनेक्ट करो, क्योंकि हम अभी जो जिस वर्ल्ड में जी रहे ना वो इससे इरा ऑफ पॉपअप, कुछ ना कुछ हमारी जिंदगी में बराबर पिंग 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 चलता चला आ रहा है ना, हमारे फोन में कंटिन्यूअस कुछ ना कुछ, कोई मैसेज आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, कहीं कुछ आ रहा है, कोई हम एक चीज के लिए हमने कुछ खोला, बाद में पता चला वो अच्छा ये मैसेज आया, मैसेज देखा, व्हाट्सएप से फेसबुक गए, फेसबुक से ट्विटर गए, और एक घंटा कब निकल जाएगा ना पता भी नहीं चलेगा। और फिर इट्स नॉट, ऐसा भी नहीं है कि हम 10 मिनट चलो हमने उस पर स्पेंड कर दिए तो वो कोई बहुत बड़ी बात हो गई, लेकिन फिर उसके बाद जब हम वापस अपनी उस चीज पर फिर से आ रहे हैं तो दैट मेट टेक ए कंसिडरेबल टाइम। और जो आपका जो वही अगेन यू कैन लूज योर थ्रेड, जो आप सोच रहे थे, जो आपकी एक लैब नहीं आ रही थी वो जा सकती है। तो जब भी कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट वर्क करना है तो इफ यू वांट यू कैन पुट ऑफ योर इंटरनेट, क्योंकि ये बोला है ना, इफ पर्सन इज डूइंग ए यूनी टास्किंग इट इज मच मोर एफिशिएंट देन मल्टी टास्किंग। एक काम अगर कोई करते हैं एकाग्रता से तो वो बहुत ज्यादा उसका आउटकम होता है, बजाय इसके कि हम एक की बार में बहुत सारे काम करें। फिर है स्लो डाउन। कई बार हम बहुत जल्दी मचाते हैं ना हर चीज में, बहुत जल्दी जल्दी मचाते हैं, बिल्कुल हर सारे काम लास्ट मोमेंट के लिए छोड़ते हैं। फिर लास्ट मोमेंट पे जब जाना होता है तो ट्रेन में पहुंच के फ्लाइट में पहुंच के पता चलता है ये रह गया, ये रखना भूल गए, वो रखना भूल गए। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो थोड़ा सा स्लो डाउन होने का, बहुत ज्यादा हरी में कोई काम नहीं करने का है। और ये देखा गया स्टडीज में कि जब आप थोड़ा सा स्लो डाउन होते हैं तो जो आपका अल्टीमेट आउटकम है इट इज मच बेटर देन कि जब आप बहुत हरी में कोई काम कर रहे थे, बहुत जल्दबाजी में कोई काम कर रहे थे। एक और आता है उसमें रिमूव डिस्ट्रैक्शंस। पूरा एक क्लास हमने डिस्ट्रैक्शंस के ऊपर सुना था कि क्या क्या डिस्ट्रैक्शंस हैं ब्राह्मण लाइफ में, तो डिस्ट्रैक्शंस को हटा देने का, जो भी डिस्ट्रैक्शन आता है उनको रिमूव कर देने का। समटाइम जैसे हम होता है कोई बहुत लाउड स्पीकर चल रहा है, मैं जब कल रात को ये कर रहा था तो बाजू में बहुत तेज लाउड स्पीकर चल रहा था तो लाउड स्पीकर के अलावा आप क्या करते हैं, हेडफोन लगा के बड़ा लाइट म्यूजिक सा विदाउट लिरिक्स, लेकिन उसमें कोई आवाज नहीं होनी चाहिए, म्यूजिक सिर्फ म्यूजिक होना चाहिए, कोई बोल नहीं होना चाहिए, बोल होंगे तो वो फिर से डिस्टर्ब करेंगे। तो लाइट म्यूजिक जो है वो आपकी कंसंट्रेशन और बना सकता है। एक और जो नया मेथड आया है पे अटेंशन टू अटेंशन। कोई भी टास्क हमें मिला हम उस पर पूरा अटेंशन दे रहे हैं कि हमारे को इस पर ध्यान रखना है, मेरा दिमाग अभी कहीं और ना जाए इधर उधर। लेकिन उस अटेंशन का एक छोटा सा पार्ट उस अटेंशन के ऊपर ही लगाना है, मतलब अटेंशन ऑन अटेंशन। वो किस लिए कि मैं जो सोच रहा हूं मुझे ये देखना है कि मेरा पूरा का पूरा अटेंशन जो फोकस है वो इस चीज के अलावा कहीं और तो नहीं जा रहा। उसको बोलते हैं वो मेंटल जर्मन शेफर्ड। एक जर्मन शेफर्ड जो डॉग होता है ना, बहुत इंटेलिजेंट होता है, तो आपने एक ब्रेन का एक छोटा सा पार्ट अपना जो है मेंटल जर्मन शेफर्ड बना दिया, और वो सिर्फ जो कि आपके थॉट्स को सुन सकता है, बिना बोले भी चीजें सुन लेता है, वो जर्मन शेफर्ड की एक खासियत होती है। तो मेंटल जर्मन शेफर्ड क्या करता है, आपके थॉट्स को सुनता है, तो वो ये देखता रहता है कंसंट्रेशन के छोटा सा पार्ट कि आपकी जो कंसंट्रेशन थी वो कहीं इधर उधर तो नहीं जा रही, वो जा रही है तो वो फटाफट भौंकना शुरू करेगा और आपको वापस उस पर लाने के लिए बोलेगा। तो ये पे अटेंशन टू अटेंशन, मतलब इस बात की अवेयरनेस हो कि मेरी अवेयरनेस कहां कहां जा रही है, मतलब उसी पर्टिकुलर चीज पर है या नहीं। इसमें ही फिर एक और है, जब ये तो हो गया कि हमने अटेंशन रखा, तो जो टेंथ पॉइंट है, जो हमारी कमिंग बैक है, दैट शुड बी प्लेजरेबल। मेरा कंसंट्रेशन था, फिर कंसंट्रेशन एकदम चला गया, लेकिन अब वो जब मैं वापस लेकर आया हूं तो उस टाइम मुझे इरिटेट नहीं होना है, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। ज्यादातर क्या करते हैं कि फिर वो कई बार अपने को ही मारने लगते हैं, तमाच मारा कहां चला गया था, और फिर कई बार जाता है तो फ्रस्ट्रेटेड होने लगते हैं। तो जो अल्टीमेट हमारे अंदर एंगर डेवलप होता है वो, दैट इज नेगेटिविटी, दैट शुड नॉट बी देयर। जब भी वापस आ रहे हैं तो इट शुड बी प्लेजरेबल। कल क्या हुआ, वो म्यूजिक फिर उन्होंने गाना बजाना शुरू कर दिया बीच में बड़ी जोर का, तो डिस्ट्रक्शन तो हो ही रहा था, बहुत तेज आवाज थी एकदम रूम में बहुत जोर से आ रही। तो फिर मैंने क्या कि वो जैसा उसके गाने का टोन था ना, उस हिसाब से मैं पढ़ने में उसको इंक्लूड कर लिया कि वो पढ़ता जा रहा मैं उसको, और उसी टोन में जैसे वो गाना बज रहा है उसके साथ उसको कोरिलेट किया, उसी के साथ जैसे डांस करते हुए रीड करना शुरू कर दिया। तो जो भी हमारा कमिंग बैक है ना, दैट शुड बी मेड प्लेजरेबल। फिर उसको हम जब अगर कंपेयर करोगे तो आप देखना, अगर आप किसी चीज पर बार बार इरिटेट होकर वापस आ रहे हो, वो किसी चीज पर आने उसकी बजाय वापस आया, इस चीज से आप खुशी डेवलप कर रहे हो अपने अंदर कि देखो मैं कितनी जल्दी वापस आ गया, पहले मुझे 3-4 मिनट इधर उधर घूमता रहा फिर वापस आया, अभी मैं तुरंत मेरा दिमाग मुझे वापस ले आया। तो अगर उसको खुशी बनाएंगे तो जो आउटपुट है ना वो आपका कई गुना बढ़ जाता है। तो जो हमारी जो कमिंग बैक है ना, वो शुड बी प्लेजेंट, बिकॉज वो बोलते कंसंट्रेशन इज ए इटरेटिव प्रोसेस है ना, रिपीटेड। एक दिन में आप जाओगे आप बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन किसी चीज पर कर लोगे, नहीं, इट्स अ प्रैक्टिस, आपको बार बार रिपीट करना पड़ता है, तब जाके आप कंसंट्रेट कर पाते हैं। एक और जो पॉइंट है उसमें जो सीक्रेट है कि बी अराउंड द पीपल हु रिमेन कंसंट्रेटेड, ऐसे लोगों के पास रहना है, ऐसी जगहों पर रहना है कि जो कंसंट्रेटेड रहते हैं, उन लोगों के साथ आप रहेंगे तो क्या उनके वाइब्रेशंस, उन्होंने लिखा है उनको ये नहीं पता कि वो कैसे होते हैं, लेकिन ये हमको पता है कि उनके वाइब्रेशंस होते हैं। जैसे हम जब योग लगाते हैं, पांडव वन में योग बहुत जल्दी लग जाएगा, है ना, ओम शांति वन में बैठे हैं योग बहुत अच्छा लग जाता है, रोड पर चलते में इतने आराम से नहीं लगता। संगठन में योग बहुत अच्छा लगता है, क्यों, क्योंकि बहुत सारी आत्माओं का जो वाइब्रेशन है ना वो उसमें हेल्प कर रहा है। ऐसे ही आप देखो कि कभी कभी आपको अगर पढ़ना है तो लाइब्रेरी में जाओ, क्योंकि वहां सभी लोग पढ़ रहे हैं, तो वहां का जो माहौल है, वहां का जो वाइब्रेशन है वो पढ़ने वाला है ना। सीसी डे में जाते हैं लोग, कैफे में आजकल देखना बहुत से लोग वहां लैपटॉप पर काम कर रहे होते हैं बड़े कंसंट्रेट होकर, तो कई बार ऑफिस में करना डिफिकल्ट होता है, वहां जाके बैठ जाओ तो क्योंकि सभी कर रहे हैं तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली वो, क्योंकि वो वाइब्रेशन वहां ऐसा बना हुआ है। तो बी अराउंड द पीपल हु आर कंसंट्रेटिंग, ठीक है। और जो लास्ट है, लास्ट 12th, When you get tired, go and do something else. जरूरी नहीं है कि हम पूरे टाइम एक ही चीज में लगे रहें, पूरा का पूरा सब कुछ उसी में। जब ऐसा लग रहा है कि टायर्ड हो गए, वॉक पे चले जाओ, ये कर लो, वो कर लो, ब्रेक ले लो, सो जाओ। क्योंकि ब्रेन को बोला गया है कि उसको कंसंट्रेट करने के लिए हमारे को ना धीरे धीरे स्ट्रेच करना पड़ता है, ब्रेन इज अडेप्टेबल। लेकिन जो स्ट्रेचिंग है ना, दैट शुड बी वेरी ग्रेजुअल। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में बैठ के और मैं सीधा 12 घंटे तक कंसंट्रेट करूंगा, तो अदरवाइज टूट भी जाएगा वो। फिर जो जैसे रबड़ बैंड को बहुत ज्यादा एट वंस करोगे तो टूट जाए, धीरे धीरे करेंगे तो वो थोड़ा थोड़ा फैलता चला जाएगा। अदरवाइज आप बहुत तेजी से करेंगे तो जो आपका ब्रेन है वो कंसंट्रेशन को ही डिसलाइक करने लग जाएगा, क्या है ये फालतू का चीज, फिर वो कंसंट्रेशन कभी करेगा ही नहीं। हाँ, तो ये जो है थोड़े से सीक्रेट थे कंसंट्रेशन के लिए। बाकी वो क्लास जो भी सुनना चाहें, बहुत अच्छी यूट्यूब पर दी हुई है, जगदीश भाई जी के नाम से डालेंगे, टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन, तो काफी डिटेल में भाई जी ने कंसंट्रेशन के टाइप बताए हुए 18। ओम शांति।